अमर के जाने के बाद समर्थ अपने आप को मिरर में देख रहा था। दूल्हा बन रहा था वो उसी लड़की का जिसके साथ कुछ दिन रह के उसे अटैचमेंट हो गया था, या यूं कहो उसे गिल्ट था अपने किए का। करीब आधे घंटे बाद मल्होत्रा हाउस से मीनाक्षी और महेश भी आ गए थे। मीनाक्षी और माही दोनों सीढ़ियों से त्रिशा को नीचे लेकर आ रही थीं। मंडप में बैठे समर्थ के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं त्रिशा को दुल्हन के लिबास में खुद के करीब आते देखकर। त्रिशा उसे लाल शादी के जोड़े में बिल्कुल किसी महारानी की तरह लग रही थी। ऊपर से उसके होठों की स्माइल उसके इस रूप पर चार चांद लगा रही थी। समर्थ ने अपने दिल पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाकर कहा, शांत हो जा, वो तेरे लिए तैयार नहीं हुई है। समर्थ ने अपने सूखते गले को तर किया और फिर अपनी नजरें झुकाकर एक टक सामने चलती हुई हवनकुंड की लो को देखने लगा। कल्याण सिंह और रजत भी काफी खुश थे। उनके दूसरे पोते की भी शादी हो रही थी। वो दोनों भाई थे और उनसे शादी करने वाली लड़कियां भी दोनों बहनें। ये सब उन्हें एक अच्छा संकेत लग रहा था। वहीं दीक्षांत को समर्थ की बातों पर काफी हद तक यकीन था, इसलिए उसे इस शादी में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे उसका भाई कहीं अपनी जिंदगी को एक लड़की के चक्कर में बर्बाद न कर ले। क्योंकि उसने देखा था समर्थ की आंखों में त्रिशा के लिए प्यार, और जब आपकी पत्नी आपके बड़े भाई से अट्रैक्टेड हो तो कैसा फील होता होगा। बस यही सोचकर दीक्षांत को समर्थ के लिए बुरा लग रहा था। पर अमर ना तो दीक्षांत की बात सुन रहा था ना समर्थ की। वो इस शादी से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला था। इसका कारण क्या था ये दीक्षांत और समर्थ को पता नहीं था। कुछ ही देर में मीनाक्षी ने त्रिशा को समर्थ के बगल में बैठा दिया था। त्रिशा की खुशबू को अपने करीब से महसूस कर समर्थ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। वो खुद की नज़रों को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो त्रिशा की तरफ ना उठे, पर त्रिशा के गहनों की आवाज़ तो कभी चुनरी की सरसराहट उसका ध्यान त्रिशा की तरफ खींच रही थी। और उसने अपने दिल के आगे हार मानते हुए अपनी नज़रों को घुमाकर त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने भी ठीक उसी वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए समर्थ की तरफ देखा और उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो इस शादी में काफी खुश लग रही थी। वहीं समर्थ का चेहरा उतरा हुआ था। उसने झट से त्रिशा से अपनी नजरें फेर ली क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। समर्थ अपनी आंखों में छाए प्यार को त्रिशा को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था, वरना उसे पता था त्रिशा जैसी लड़की है वो उसकी फीलिंग्स का भी सिर्फ मजाक ही बनाएगी। जानवी एक कोने में खड़ी थी। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए त्रिशा और समर्थ को देख रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन में कहा, मैं उम्मीद करती हूँ दी और समर्थ जी एक साथ खुश रहें और दी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। जानवी ये सब बोल ही रही थी कि अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ फील हुए और जानवी एकदम से सिहरते हुए धीरे से बोली, अमर, आप? अमर ने उसके कान को अपने होठों से छूते हुए कहा, श, बच्चा। जानवी ने अमर की खुशबू से उसे पहचान लिया था। उसने कसकर अपने होठों को भींच रखा था और खुद में सिमटते हुए अब अमर से धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, प्लीज दूर हटिए ना। अमर ने आंखें छोटी करते हुए उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें हर वक्त बाकी लोग ही नजर आते हैं क्या? अपना पति नजर नहीं आता है? मैं दो दिन से देख रहा हूँ। तुम इन शादी की तैयारी में इतनी ज्यादा थक जाती हो कि रात को मुझे दो पल बात भी नहीं करती हो। अब आज तुम्हें यहाँ दो तीन घंटे तो खड़ा रहना ही पड़ेगा, तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। जानवी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोला और चारों तरफ देखा। सब मंडप की तरफ देखने में बिजी थे, किसी की नजरें उन पर नहीं थीं। ये देखकर जानवी ने एक सुकून भरी सांस ली और फिर धीरे से अमर के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखते हुए बोली, पर आज तो सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके पास ही रहूंगी। आपको मुझसे जो पूछना हो, जो बताना हो, वो बता सकते हो। अभी तो बस दो तीन घंटे का इंतजार है। अब दो दिन का इंतजार किया है तो ये कुछ घंटे भारी थोड़ी है। अमर ने अपने गीले होठों को उसके खुले कंधे पर टिकाते हुए धीरे से बुझे लहजे में कहा, कर लूंगा इंतजार, पर मुझे दुख इस बात का है, जितना बेसब्र मैं तुम्हारे लिए हूँ उतना तुम मेरे लिए नहीं हो। कब वो दिन आएगा जब तुम मुझे उतना मिस करोगे जितना मैं तुम्हें करता हूँ? तुम्हारा मन भी मेरे करीब बैठकर मुझसे हालचाल पूछने का करेगा। आई एम अ बैड हस्बैंड जिससे आज तक उसकी वाइफ को लगाव नहीं हो पाया। अमर की बात सुनकर जानवी का दिल कांप उठा। उसने मोड़ते हुए अमर के चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं अमर जैसा आप सोच रहे हैं। अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा ही है बच्चा, मैं जब जब तुम्हें बोलता हूँ मेरे पास बैठ जाओ तुम कहीं चली जाती हो, तुम्हारे पास काम आ जाते हैं, तुम्हें सबका ख्याल रखना होता है और मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं और ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, तुम देखना एक दिन तुम्हारा मन जरूर करेगा मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने का, पर पता नहीं वो दिन आएगा कब। ये सब बोलते हुए अमर के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी, जैसे वो खुद से बहुत ज्यादा नाराज हो। ये सुनकर जानवी का चेहरा परेशानी और दुख से भर चुका था। उसने भरे गले से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, मैं बस इस शादी में ही तो बिजी थी, उससे पहले तो मैं बिजी नहीं थी। आप बिजी थे लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि